ओम शांति। बाबा के इस बेहद यज्ञ में आप सभी बाबा के बहुत बहुत स्नेही और सहयोगी बच्चे तपस्या कर रहे हो। मुझे पता है उल्लास नगर के भाई बहने उनको यज्ञ स्नेही कहने की जरूरत नहीं है, वो है ही यज्ञ स्नेही। सदा उनका सहयोग बाबा के यज्ञ में पहुंचता रहता है। हमारी निमित्त सोम बहन को बाबा के यज्ञ से बहुत प्यार है, जो भी आता है सेंटर पर वो यज्ञ में भेज देती है। तो आप सबको यज्ञ स्नेही और सहयोगी कैसे बने बताने की जरूरत है क्या? आप तो हैं सदा स्नेही और सहयोगी। बाबा सब कुछ तेरा ही है ना, सबका अंदर से। जब बाबा को मेरा कहा है, हर एक ने दिल से कहा है ना मेरा बाबा, तो बाबा जब मेरा है तो बाबा का सब कुछ हमारा है और हमारा सब कुछ बाबा का है। बाबा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की। ये ज्ञान यज्ञ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। क्या नाम है पूरा? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वयं परमात्मा पिता ने, रुद्र भगवान ने बच्चों को स्वराज्य देने के लिए ये ज्ञान यज्ञ रचा। और जिस दिन से यज्ञ रचा उस दिन से लेकर के यज्ञ पिता, यज्ञ माता और हम सब बच्चे इस यज्ञ को बढ़ाने में, यज्ञ को आगे बढ़ाने में, यज्ञ को निर्विघ्न रखने में, यज्ञ को सफल करने में सदा लगे रहते हैं। यही लक्ष्य रहता है कि बाबा का यज्ञ सदा भरपूर रहे, यज्ञ में भंडारा सदा चलता रहे, हजारों बच्चे आते जाएं, खाते जाएं, अखुट भंडारा। तो आप सब देख रहे हो कि बड़े बड़े डेग, कितनी बड़ी बड़ी डेगियां चढ़ती हैं, हजारों का भोजन बनता है, इतने ब्राह्मण आत्माएं सेवाएं करते हैं और सब तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के दुआएं दे करके जाते हैं। द्रौपदी का भंडारा गाया हुआ है, द्रौपदी के भंडारे से कोई भी खाली नहीं जा सकता। तो बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की और इसीलिए यज्ञ रचा। ये पुरानी सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होगी। उस यज्ञ को जब रचते हैं तो कहते हैं स्वाहा स्वाहा। क्या डालते हैं उसमें? तिल जौ डालते, घी डालते। बाबा कहते हैं ये तो अनाज को स्वाहा कर देना, घी को स्वाहा कर देना, इससे वायुमंडल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन पूरे विश्व का वायुमंडल चेंज हो, नरक स्वर्ग में बदल जाए, तो उसमें हम सब की आहुति पड़नी चाहिए। बाबा कहते सारे विश्व की आहुति इसके अंदर पड़नी है। तो आप सबने अपनी अपनी आहुति डाली है? डाली है सभी ने। बाबा हम सब की आहुति तभी स्वीकार करता है जब हम दिल से कहते हैं बाबा ये सब तेरा है। तो चाहे तन मन धन की आहुति डाली है, चाहे अपने पुराने स्वभाव संस्कार, कोई कमी कमजोरी, ये बहुत छोटे छोटे तिलजों के बराबर हैं। बाबा कहते हैं दिल से बच्चे स्वाहा कर दो। कई बार तेज आग में स्वाहा करने जाते हैं ना तो हाथ जलने लगता, पीछे खींच लेते हैं, आहुति अंदर तक पहुंचती नहीं, अधूरी रह जाती है, वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। यज्ञ में पूरी आहुति जलनी चाहिए, वापस नहीं रहनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने यज्ञ रचा और शुरू से लेकर के यज्ञ में ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, जाति वाले नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों ने इस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा की। और जितने बच्चे बाबा के बनते गए उन्होंने अपना सब कुछ सफल किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प, जो कोई शक्ति थी वो बाबा तेरी, तेरे काम में लग जाए। तो आप सभी ने तो यज्ञ स्नेही बन करके सदा ही सहयोग दिया है। मुझे तो 42 साल का इतिहास थोड़े समय में सुनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सार रूप में मैं आपको सुनाऊंगा। 42 साल मैं मधुबन में रहा हूँ 72 से, उसके पहले से तो बाबा का यज्ञ चलता आया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के होते बाबा कहते थे बच्चे तुम्हारे 108 सेवा केंद्र होंगे। तो 108 सेवा केंद्र सुन करके बहने कहती थी बाबा ये तो बड़ी बात, बहुत मुश्किल है, बहुत विरोध होता है। अरे बच्चे तुम तो देश विदेश सब जगह जाओगे, ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है, सब इसमें समर्पित होंगे, सब स्वाहा होंगे। सोच भी नहीं सकते थे कैसे होगा, क्या होगा, क्या भविष्य बाबा दिखाता है। लेकिन बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त होते ही बहुत फास्ट गति की सेवाएं बाबा ने खुद प्रारंभ की। निमित्त दादियों को रखा, बहनों को रखा, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा ने जो बाबा ने साकार में कहा था वो प्रैक्टिकल सब प्रेरणाएं उनकी साकार होने लगी बाबा के अव्यक्त होते ही। 71 में लंदन में केंद्र खुला और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर धीरे 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 फैलता गया और आज 135 से भी अधिक देशों में बाबा के केंद्र चल रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं। कितना बड़ा यज्ञ हो गया, छोटा सा था। हर जगह यज्ञ कुंड बने हुए हैं, छोटे छोटे यज्ञ कुंड, और मधुबन है महायज्ञ। इस यज्ञ के अंदर पूरे विश्व की सामग्री सब कुछ स्वाहा होना है। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है कि मेरे बच्चे दिल से संकल्प करके जो संकल्प करो, एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त दान महापुण्य। और बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे ही यज्ञ को चला रहे हैं। दादियां हम सबको कहती थी, जब हम लोग शुरू शुरू में आए तो बहुत बेगरी पार्ट था, ओम शांति भवन ये ही हाल जिसमें आप बैठे हैं ये 75 में बना, पहले नहीं था। वो छोटा हिस्ट्री हॉल बन गया था बाबा के होते, इंद्रप्रस्थ भी बन रहा था, ट्रेनिंग सेंटर ऊपर का सेक्शन बन रहा था और बाबा अव्यक्त हो गए। उसके बाद जो वृद्धि हुई है सेवाओं में, धीरे 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 हर साल एक बिल्डिंग बनी। और हम सबको याद है कि दादियां जो समर्पित भाई बहने थे उनमें इतना उमंग उत्साह भरती थी, उसी उमंग उत्साह से यज्ञ के अंदर हम सब अधिकतर कर्मणा सेवा में अपना सहयोग देते थे। और सेवाएं बहुत कम थी यहाँ पर, मजदूर कोई नहीं थे, कोई नौकर नहीं थे। और दादी दीदी हमेशा हम सबको इतना उमंग देती थी, इतना उत्साह दिलाती थी, कोई काम भारी नहीं लगता था। अमृत वेले 4 बजे से लेकर के हम सब की सेवाएं शुरू हो जाती थी। नाइट ड्यूटी अलग होती थी, लेकिन 2-2.5 बजे पानी गर्म करना, बॉयलर सिस्टम तो था नहीं, रनिंग वाटर नहीं थे, एक जगह पर बॉयलर गर्म करके पानी का टंकी गर्म करके और सुबह 4 बजे ही सब के कमरों में बाल्टियां भर भर के पहुंचाते थे। ठंडी बहुत होती थी और बहुत थोड़ा परिवार था, 30-40 का हमारा समर्पित परिवार था, और 100 स्टूडेंट आते थे तो हम कहते थे दादी बहुत बड़ी सीजन हो गई, बहुत बड़ी सीजन हो गई। क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि कमरे बहुत कम थे, तो हम सबको दादी कहती थी मेहमान आए हैं तो तुम सब ब्रांडों में आ जाओ और उनको अपने कमरे दे दो। तो मेहमान आए बाबा के घर में तो हम सब बाहर उनको कमरे दे देते थे, कमरे बहुत छोटे थोड़े थे। और फिर कभी कभी पट बना देते थे तो दरी पर सब बाहर वाले हम सब एक साथ सो जाते थे, एक एक कमरे में 10 लोग 12 लोग। वो भी दिन बहुत प्यारे थे, अभी तो बहुत बढ़ गया है। तो 100-150 लोग आते थे, जब उनके लिए खाना बनता था, रोटियां बनती थी, तो गीली गीली लकड़ियां, अभी तो स्टीम सिस्टम है, उसके बाद पहले कोयला आया, उस पर सिगरियों पर खाना बना, पहले लकड़ी पर जो हम लोग यहाँ जंगल से लकड़ी लाते थे उस पर खाना बनता था, और बहुत गीली लकड़ी होते थे। तो आप समझते हो गीली लकड़ी पर अगर 150-200 लोगों खाना बनाया जाए तो कितनी मेहनत, आंखें लाल लाल हो जाती थी। लेकिन बनाना तो तीनों टाइम पड़ेगा ही। तो बाबा ने बहुत प्यार से यज्ञ को कैसे कैसे वृद्धि की, कैसे इसका विस्तार हुआ है और किसके द्वारा हुआ, जितने बच्चे बढ़ते गए, बाबा के बच्चे नए नए आते गए, उन्होंने बहुत दिल से यज्ञ में अपना अपना सहयोग दिया। पहले स्नेही बने, और जो स्नेही है वो सहयोगी बनने बिना नहीं रह सकता। स्नेह की निशानी सहयोग है। तो अगर हमारा बाबा से स्नेह है, बाबा के यज्ञ से स्नेह है, तो स्नेही बच्चों को कोई भी चीज कमी अगर दिखाई देती है तो फौरन ही हाजिर हो जाते हैं। उस समय क्या था, शुरू शुरू में राजस्थान के अंदर लाइट बहुत जाती थी कई घंटे, अभी भी बहुत जाती है, अभी पता नहीं चलता है, लेकिन 7-8 घंटे अगर लाइट रहे 24 घंटे में तो पूरा टाइम क्लास के टाइम, भोजन के टाइम अंधेरा ही रहता था। तो एक भाई को पता चला यहाँ अंधेरा रहता है, तो पहले पहले एक छोटा सा जनरेटर ला करके दिया, खुद अपने आप ले करके, दादी ये जनरेटर यहाँ रखो जरूरी है। जनरेटर रखा, फिर यहाँ पर एक बहुत बाबा का लौली बच्चा निकला जो राजस्थान का गवर्नर था, चीफ गवर्नर था चन्ना रेड्डी, सुना होगा नाम आप लोगों ने। लखनऊ से उसने संपर्क में आया था, लखनऊ में जो गवर्नर था तब वहाँ पर भी उसने सेवाएं कराई थी। और फिर राजस्थान का जब गवर्नर बना तो जब आबू में आते थे, गवर्नर हमेशा राजस्थान के एक बार आबू आते हैं मई जून की गर्मियों में, तो शाम के समय वो रोज बाबा के घर में आ जाते थे। बहुत स्नेह भी था और बाबा से, दादियों से, परिवार से प्यार भी था, और कुछ ज्ञान का मुरली सुनना, कुछ क्लासेस सुनना, हर बात में इंटरेस्ट रखते थे। तो जब वो यहाँ पर आए तो देखा यहाँ तो लाइट ही नहीं रहती है, बार बार लाइट चली जाती है। तो पूछने लगे अपने अधिकारी जो साथी होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा स्टाफ होता है, गवर्नर हाउस में तो कभी लाइट जाती नहीं है, यहाँ क्यों लाइट जाती है? तो उन्होंने कहा साहब गवर्नर हाउस का तो डायरेक्ट कनेक्शन है पावर हाउस से, अगर वहाँ लाइट जाएगी तो तुरंत जनरेटर चलते हैं, लो लाइट आ जाती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वहाँ लाइट का पता नहीं चलता, और ये तो प्राइवेट संस्था है, इनके पास तो लाइट जाएगी ही। तो बोलता है कि मैं कहता हूँ इनको भी डायरेक्ट कनेक्शन दे दो। तो उसने बड़ा अच्छी तरह से सब पूरा फाइल बनवाई और उसको डायरेक्ट कनेक्शन दिला दिया बाबा के घर को। डायरेक्ट कनेक्शन का बड़ा महत्व है। आप सबका बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है कि इनडायरेक्ट है? तो लाइट जानी नहीं चाहिए, ये लाइट नहीं। तो बाबा कहता है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनके पास सब शक्तियां होती है, कभी भी कमी नहीं पड़ती। जब जरूरत है आलो किया बाबा से, जोड़ा कनेक्शन, आ गई लाइट, शक्ति आ गई, लाइट माना शक्ति आ गई, माइट भी साथ साथ आ जाती। तो हम सबको बाबा ने डायरेक्ट कनेक्शन दिया है और उस समय से मधुबन में लाइट जाना बंद हो गई, कम हो गई। जनरेटर तो है, कभी जाती है थोड़ी देर के लिए तो जनरेटर चल जाते हैं, सोलार भी हैं। तो सब व्यवस्थाएं जो धीरे धीरे यज्ञ में बढ़ती गई आती गई, वो बाबा के ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चों के तन मन धन के सहयोग से। दादियों ने, बाबा ने एक स्लोगन पहले से दिया था, क्या स्लोगन था बाबा का, मांगने से मरना भला। मांगना नहीं बच्चे किसी से, तुम भगवान दाता के बच्चे हो, तुम किसी के आगे हाथ थोड़ी फैला सकते हो, मांगना नहीं। तुम ऐसी सेवा करो, ऐसी पालना करो जो वो दिए बिना रह न सके, अपने आप देगा। एक दिन की बात था, एक गेस्ट आई थी, वीआईपी थी, विदेश की थी, और दादी जानकी के सामने गई। तो आप सबने जानते हो कैसे दादियां पालना करती हैं, उनकी तो बहुत पालना की अपनी अपनी कला है, उनसे सीखना चाहिए। तो सामने बैठी थी दादी के, तो दादी ने पहले दृष्टि देती है, फिर बोल बोलती है, कुछ महावाक्य उच्चारण करती है, फिर उसके बाद बादाम खिलाई, फिर टोली दिया, फिर स्लोगन दिया, फिर बोली आम ले आओ, फिर ये ले आओ, फिर ये ले आओ। उसके हाथ जो थे ना, पूरा ही सब कुछ भर दिया, भरती गई भरती गई भरती गई। अब वो सब भर गया, इतना सब दिया, वो वीआईपी थी, ऐसे तो कोई इतना पता नहीं था उसको। लेकिन जब लेकर के चलने लगी तो उसको संकल्प आया, दादी ने मुझे इतना दिया, मैंने यज्ञ में क्या दिया, मैंने तो कुछ नहीं दिया। बाहर गई, सब सामान रखा और निकाला लिफाफा, फटाफट आकर के दादी के हाथ में रख दिया। दादी कहती नहीं नहीं आप लोगों के लिए तो, दादी ये बोझ मेरे को थोड़ी चढ़ाना यज्ञ का, तो कैसे यज्ञ भरपूर होता है, मांगने से देने से। जितना हम बाबा के यज्ञ में देते हैं, देने वाले को अपने आप ख्याल आता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। कितनी सुंदर सिस्टम बाबा ने बनाई कि आप बच्चे पालना करो अच्छी तरह से, अपने आप सब लोग करेंगे, मांगो नहीं। मांगोगे तो कितना देंगे, बिना मांगे तो सब कुछ सरेंडर कर देंगे। तो बाबा का यज्ञ इतना जो बेहद का वृद्धि को प्राप्त हुआ, जो इतना सारा आप सब देख रहे हैं, पिछले बार मैंने एक क्लास कराया था, यहाँ राजस्थान का ग्रुप था, तो मैंने इसी विषय पर क्लास कराया। हमको पता है आपको गेहूं कैसे आते हैं, चावल कैसे आते हैं, सब्जियां कहाँ से आती हैं, तो सबको क्या पता कैसे होता है, आप लोगों को शायद मालूम हो, मालूम है सबको नहीं। अच्छा, क्योंकि इतना सारा भंडारा चलता है, हजारों बाबा के बच्चे खाते हैं, एक एक दिन में 30 बोरी 40 बोरी गेहूं खत्म होता है, चावल खत्म होता है, तो कितना स्टॉक रखना पड़े। पूरी सीजन चलती है, 6 महीना तो बाबा की सीजन चलती है, और नॉन सीजन में भी, अभी नॉन सीजन होती कहाँ है, 12 मासी सीजन है, अभी भी 10,000 लोग, कल 12,000 नीचे थे सम्मान समारोह में। तो इतने सारे भंडारे, 3 भंडारे हो गए एक से, तो देने वाले बाबा के गुप्त बच्चे हैं, बहुत प्यार से पूछते हैं। तो जब मैंने क्लास कराया कैसे चलता है, तो एक भाई 3-4 दिन पहले मेरे फोन करता है, भाई जी मैं एक ट्रक सब्जी भेज रहा हूँ। मैंने कहा सब्जी से कनेक्शन मेरा नहीं है, मेरा मुरली से कनेक्शन है। तो बोलता है भाई जी आपने क्लास कराया था ना, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। वहां से जयपुर के गांव से पूरा ट्रक 3 टन टिंडा 42-45 बोरा भर करके और सब पूरा ट्रक का ट्रक भेज दिया, आ गया शांतिवन में मेरे नाम से। ना भाई मेरे नाम से भेज रहा है, मुझे तो पता ही नहीं सब्जी कौन उतारता है कौन रखता है, ठीक है अच्छा भेजो। फिर कहता है आप मना नहीं करना, आप बड़ी दीदी को बोलना नहीं, मेरी दिल की इच्छा है ना मैं बाबा के यज्ञ में कुछ करूं, गुप्त करूं, कोई को बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पता है, मेरे को पता, तीसरे को पता नहीं होना चाहिए, मेरे को ये बंधन बांध दिया, किसी को नहीं बताना है किसने भेजा है। और चुपचाप ट्रक उतार करके चला गया। फिर बोलता अगले हफ्ते में पिठा होता ना गोल, क्या बोलते हैं वो कुमड़ा, उसको भेजूंगा एक ट्रक, आप उतरवा लेना, लेकिन बोलना नहीं किसने भेजा, हमने टोली तो ले लो, मैं टोली भेजूं, नहीं नहीं वो ट्रक बाहर का है, उतार के चला जाएगा, आप चिंता नहीं। तो बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे हैं, जहां गेहूं होते हैं, कोई इकट्ठे करते हैं अपने अपने सेंटर, मान लो 100 किसान एक सेंटर पर आते हो, एक एक बोरी निकालने में क्या बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। जहां ऐसे कोई भी फसल होती, आम होते हैं, तो आम के ट्रक आते हैं, भेजते हैं लोग मिल करके सब, भाई हमारे बगीचे के आम हैं, या हम अपने यहाँ बहुत आम की फसल निकल रही है दादी, हम भेज दें। दादी कहते भले भेजो, आपका सफल हो जाए। तो ऐसे बाबा के बच्चे हर चीज जो यज्ञ में जहां जरूरत होती है, जो कर सकता है, कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन अधिकतर हर एक अपना अपना सहयोग गुप्त भेज करके अपना गुप्त भाग्य बना रहे हैं। तो इसलिए यज्ञ स्नेही, तो बाबा का यज्ञ बेहद का है और आप सब यज्ञ स्नेही हो, इसलिए अधिक मैं इसमें क्या कहूं, सब दे ही रहे हो ना, सब सहयोग और भरपूर तभी है जब बहुत दिल से, कोई सच्चे दिल से बाबा के यज्ञ को भरपूर करता, कोई मांगने की जरूरत नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं मांग लिया सो क्या कहते हैं, मांगने से माना भला। मांगना बाबा ने एकदम मना इसलिए किया कि मांगने से जो देने वाला है ना, उसकी दिल में अगर नहीं भावनाएं हैं तो उसका सफल नहीं होता है। भावनाएं चाहिए, प्यार चाहिए यज्ञ के प्रति। तो ये बाबा का बेहद का यज्ञ है, बेहद के घर में सब बाबा के बच्चे अपना अपना हर प्रकार का सहयोग देते हैं। यहाँ पर जितनी बिल्डिंग बनी है 83 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन यज्ञ में आया। जैसे यज्ञ क्या एक परिवर्तन आया बाबा के अव्यक्त होने पर, बहुत बड़ा परिवर्तन था। बाबा चला जाएगा इसे अचानक कोई को पता ही नहीं था, अव्यक्त पाठ चला, दादी दीदी निमित्त बनी, इतनी सेवाएं हुई, वो अलग हुआ, वो पार्ट चेंज हुआ। लेकिन दूसरी बार जब दीदी अव्यक्त हुई, उस समय का बहुत बड़ा परिवर्तन था। 83 तक हम सब ने यज्ञ में हर प्रकार की कर्मणा सेवाएं की, धोबी घाट करना, पानी गर्म करना, रोटियां बनाना, सब कुछ मिनिमल, माना कोई भी मशीनरी नहीं थी। और इतनी बिल्डिंग जितनी बनाई गई मधुबन में, जो भी सुखधाम बना, विज्ञान भवन बना, किचन बना, विशाल भवन बना, जो बिल्डिंग बनी उन सब में हम लोगों ने सरिया बांधना, सीमेंट चढ़ाना, कैंची बना, सब कुछ मधुबन वालों ने, कोई इंजीनियर कोई मजदूर नहीं। ओम शांति भवन भी दादी खुद जाकर के खड़ी होती थी और हरेक को कहती थी चलो आज सब कर्मणा सेवा करेंगे, कार सेवा करेंगे। और उस कार सेवा के अंदर पत्थर तोड़ना, पत्थर तो तोड़ना हम लोगों को आता नहीं था क्योंकि ये पहाड़ियां थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उनको कैसे बराबर किया जाए, कैसे लेवलिंग किया जाए, उसको तोड़ना और तोड़ के वो पत्थर उठाना। तो दादी खुद खड़ी होती थी, चाय बनवा लेती थी, पकौड़ा बनवा लेती थी, सबको ले जाती थी जितने लोग आते, यही हमारा क्लास होता था। अभी तो हम क्लास योग करते हैं ना, उस समय यही क्लास था। और सब बड़े प्यार से जाते थे, 4 घंटा 6 घंटा, कभी 9 बजे तक रात को लाइट लगा दिया और सब काम कर रहे हैं। तो ओम शांति भवन हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल में बना दिया, इतना बड़ा बिल्डिंग। अनाउंस पहले हो जाता था इस डेट को उद्घाटन है और दीवार बनी नहीं है। डेट को उद्घाटन है तो उसके लिए इतना मेहनत करनी पड़ेगी ना। हमको पता है जब 8 फरवरी को उद्घाटन अनाउंस हुआ ओम शांति भवन का, तो नवंबर दिसंबर में अनाउंस कर दिया था, 2-3 महीना थे और हाल की दीवार नहीं बनी थी। कैंचियां डालनी है, छत डालनी है, कैंचियों को रंग करना है, बिजली फिटिंग करनी है, टाइल्स तो पता ही नहीं थी कहाँ लगेंगी। और 3 महीने के अंदर ऐसी सब भाई बहने लग गए आकर के, एक अपने बीके के पास एक स्टाफ था, वो ले आया सारा का सारा, पूरा प्लास्टर करवा दिया फटाफट, रातों रात टाइल्स लगवा दिए। इतनी फास्ट स्पीड में ओम शांति भवन बना है। और केवल दादी कहती थी मेरे पास जो बजट है वो 9 लाख है, और ओम शांति भवन कितना लगा होगा, तोड़ने में इतना लग जाए। लेकिन सब ने इतनी मेहनत की, इतना खून पसीना एक किया, जो आज ओम शांति भवन जैसी बिल्डिंग, भले बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, वो वाइब्रेशन उसमें जैसे हैं, योग के, प्यार के, खुशी के, उसको देखने से, अंदर जाने से लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। और हजारों आत्माओं की सेवा हो रही है, कितने वीआईपी आते हैं देखने के लिए। तो ये बिल्डिंग जो बनी, इसके बाद ऐसा चेंज आया जो सब कर्मणा सेवाएं बाबा ने रुकवा दी। हम लोगों को सब सेवाएं छूट गई, मशीन आ गई, धोबी घाट मशीन पर हो गया, स्टीम सिस्टम आ गया, रोटियां स्टीम पर पकने लगी, खाना स्टीम पर बनने लगा, पानी बॉयलर सिस्टम हो गया, रनिंग वाटर हो गया, सब कुछ 83 के बाद चेंज हुआ। 83 तक ऐसा समय था जो हम सब ने हर प्रकार की ऑलराउंडर सेवाएं की, और जिसने यज्ञ की, दिल से सेवा की, यज्ञ पिता यज्ञ माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गए। उसको प्रसन्न करने का साधन यही तो है ना, भगवान ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, और उसके यज्ञ में हम बच्चों ने अगर लगाया अपना तन मन धन समय, तो बाबा ने ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद का हाथ रख दिया सिर पर, अच्छे जीते रहो। तो हम सबको वो आशीर्वाद ऐसे मिली बाबा के यज्ञ में कि हमने जो कर्मणा सेवाएं की, धोबी घाट किया, 13 साल 11 साल लगातार सबके कपड़े धोए, और आज हम कहते हैं इसी जन्म में हमको रुमाल भी नहीं धोना पड़ता है, वो भी धुल के मिल जाता है। आ गया ना समय ऐसा, तो रिटर्न तो बाबा इसी समय देता है ना। तो उस समय जिन्होंने बहुत प्यार से दिल से सेवाएं की है, यज्ञ पिता को प्रसन्न किया है, तो जिसने भगवान को, यज्ञ पिता यज्ञ माता को प्रसन्न कर लिया, उसको सब कुछ भरपूर कर देता, मनोकामनाएं उसकी सब पूरी हो जाती। क्योंकि हमारे यज्ञ पिता और यज्ञ माता का नाम क्या जानते हो, शास्त्रों में एक नाम गाया हुआ है, यज्ञ पिता को कहते हैं कपल मुनि, कल्प वृक्ष के नीचे कपल मुनि कामधेनु मां तपस्या कर रहे हैं। वो तो दिखाते हैं कपल मुनि के पास एक गाय थी, उसका नाम कामधेनु था, और उसके पास जो जाता था उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती थी। बाबा तो गाय के पास जाने तेरी कामनाएं थोड़ी पूरी हो जाएंगे, ये तो गौ एक प्रतीक है, ये मेरी बेटी सरस्वती का नाम है। तो ब्रह्मा बाबा कपल है, कपल है ना, कपल माना जोड़ा है, कपल है ना, ब्रह्मा बाबा कपल है कि सिंगल है, शिव बाबा उसके साथ कंबाइंड है, तो कपल मुनि है, और उसकी बेटी कामधेनु माँ है, जगत अम्बा है, और उसके हम सब बच्चे हैं, साथ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो जिन्होंने कामधेनु माँ कपल मुनि बाप को प्रसन्न कर लिया, उनकी सब मनोकामनाएं बाबा ने इसी संगम पर पूरी कर दी, उनको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, जो इस समय है वो भविष्य तो होना ही अच्छा है। तो इसलिए यज्ञ की ऐसे धीरे धीरे वृद्धि हुई, और करने वाले बहुत गुप्त बच्चे, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था ना, आप सबको पता नहीं होगा ज्ञान सरोवर कैसे बना, वंडरफुल उसकी कहानी है। क्या कहानी है उसकी मालूम है किसको, ज्ञान सरोवर की कहानी है? बहुत कम है, ये कहानियां सुनने का तो इंटरेस्ट रहता है ना। ज्ञान सरोवर के पहले एक कहानी सुनाते, हमारे यज्ञ की वृद्धि होने लगी, ओम शांति भवन भी छोटा पड़ने लगा। एक बार 5,000 लोग आ गए आबू में, ब्राह्मण कहां बैठे, ओम शांति भवन में 3,000 तो घुस जाते, फिर उसके बाद आ गए 5,000 इकट्ठे। तो ये जो आंगन है ना, ये सारा आंगन भर गया, बाबा को आंगन में बुलाया बाहर, बाबा तो मिले कम से कम इन सबसे। तो इतनी भीड़ हुई तो दादी को संकल्प आया कि हम कुछ नया स्थान लें और बनाएं, बहुत वृद्धि हो रही बच्चों की। तो यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गौमुख, और गौमुख के पास एक सन्यासी है, सन्यासी था, अभी तो शरीर छोड़ा कुछ दिन पहले, 108 साल की उम्र के बाद शरीर छोड़ा उसने, और वो बाबा का बहुत बहुत प्यारा बच्चा भी था, और बाबा से बहुत उसका स्नेह था, और हमारे मधुबन के भाई लोग उसकी सेवा भी करते थे, क्योंकि बुजुर्ग था, ठंडी होती थी, दादी को बड़ा रहम था, बहुत प्यार था। जब भी ऐसा कोई समय आता था, मान लो आम आए तो कहेगी आम दे आओ जा करके, ठंडी हुई कंबल सबको बांट के आ जाओ, सब सन्यासियों को दे आओ, जहां जहां गुफाओं में रहते हैं ना, कंबल दे आओ, उनको कोई चीज चाहिए दे आओ। तो दादी प्यार से यहां से हर साल उनके पास कुछ न कुछ भिजवा, अभी भिजवाते, अभी तक सिस्टम बना हुआ। तो उस सन्यासी का यज्ञ से बहुत प्यार था और भाई बहनों को उसने कहा कि हमारे पास करीब 40 एकड़ जमीन है और मैं सन्यासी यहां का अकेला हूं, आप चाहे तो ये ले लो। अपने सारे कागज आगज, हमारे 3-4 भाई थोड़ा खुश हो गए क्योंकि दादी को प्रेरणा आ रही थी कि हमको बड़ा स्थान चाहिए, बहुत बच्चे बढ़ रहे हैं। तो उस सन्यासी ने सामने से ऑफर किया तो भाइयों ने सोचा कि चलो ठीक है, समय पर मिल रही है जमीन, इसकी बड़ी दिल है, ले ली जाए। लेकिन दादी जी ने एक नियम बनाया था कि बिना बाबा से पूछे मैं कुछ नहीं लूंगी। तो भाई लोग तो कागज उसके लेकर के आ गए, लिखा पढ़ी जब बात चली तो बाबा को बुलाया गया। बाबा जब भी बुलाते थे आ जाते थे, उस समय ये ऐसा नियम नहीं था इस तारीख को आएंगे इस तारीख को आएंगे, लेकिन दादी दीदी का इतना अधिकार था जब चाहिए बाबा को बुला लो, गुजरा दादी को बिठा दो, भोग वोग नहीं सामने, जाओ बाबा को बुलाओ। तो छोटे हाल में बाबा को बुलाया गया, गद्दी पर ऐसे नीचे गद्दी लगाई, बाबा आ गए। और बाबा आते ही सामने देखा, सब बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि दी और मुरली सुनाने की बजाय कहते हैं, बच्चे बाप को सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए, उनकी जमीन वापस कर दो, उनका कागज वापस कर दो, नहीं चाहिए। अब ये सब तैयारी करके बैठे हैं, दादी सोची बाबा से छुट्टी लेंगे, बाबा थोड़ी मना करेगा, सब तैयार हैं और बाबा आकर के सीधा बोलता है बाबा को सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए। चुप, सब चुप हो गए, बाबा को क्या कहेंगे, बाबा वो बड़े प्यार से दे रहा है, बहुत भावना है, उसको आपका अनुभव हुआ है। एक बार उसका छोटा सा ऑपरेशन था, उसको अहमदाबाद में ले गए तो डॉक्टर्स ने जब ऑपरेशन किया ना तो उसने साक्षात्कार किया, ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा उसके साथ सिर पर ऐसे हाथ रख के खड़ा है, अनुभव किया उसने कि ब्रह्मा बाबा ने हमारा ऑपरेशन करवाया खड़े होकर के सामने। इसलिए उसकी इतनी भावना थी कि बाबा के यज्ञ में सब जाना चाहिए। लेकिन बाबा जब आए तो बाबा ने कहा नहीं चाहिए, क्या करें, बाबा कह रहा थोड़ी मना करें, ठीक है। दूसरे दिन कागज वापस करने गए, वो ले ही नहीं, कहे नहीं नहीं ऐसे आप क्या हो गया है, आज कल तक तो आप लोग सब ठीक था, आज क्या हो गया, बाबा मना कर रहा है, बाबा कैसे मना करेगा, बाबा को मैं बोलूंगा, वैसे बोले। लेकिन उसमें बहुत बड़ा राज था, 2-3 दिन के बाद उनका जो यहाँ पर संस्था है ना गुरुओं की, उनको पता चला ये ब्रह्मा कुमारी को दे रहा है, वो सब डंडा ले लेके पहुंच गए। दादा बाबा ने तो वापस करा दिए थे कागज, अगर वो हमारे पास कागज होते तो कितना यज्ञ में नुकसान करते हो, बहुत जोर शोर होता। तो उन्होंने तो वहां हंगामा किया, तो उसने तो बोला उन लोगों ने लिया ही नहीं भाई, हम तो दे रहे थे, वो तो सब कागज वापस गए, तो बेचारे चुप हो गए। उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार विरोध करने आए, लेकिन बाबा तो ऐसे लोग लिया ही नहीं किसी का। उसके बाद एक दिन बाबा आए ओम शांति भवन, और दादी और सब विदाई के बाद वैसे सामने बैठते हैं ना, तो दादी को ऐसे बुलाया साथ में और बाबा ने कहा, इधर ऐसे इशारा किया, ये जो दूध वाले आते हैं ना सालगांव से दूध वाले, उनसे बात करना, वहां जमीन है। बाबा ने दादी को कान में ये बोला कि दूध वालों से बात करना। और सामने से वो दूध वाला दूसरे दिन आया, जो हमारा भाई था यहाँ पर वल्लभ भाई, दूध जो संभालता था लेता था, उसको सामने से बोलता, भाई जी आपको कोई जमीन चाहिए तो मेरे को बताना, मेरी 30-35 एकड़ जमीन वहां पर हमारे गांव वालों की है और वो देना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। इधर बाबा इशारा दे रहा है, उधर वो सामने से आके बोल रहा है। देखने गए तो पूरा जंगल, पूरी झाड़ियां ही झाड़ियां, कहीं जमीन दिखती नहीं थी। तो दादी को लेके गए तो दादी पहले सोचने लगी, ये जमीन क्या करेंगे, क्या बनाएंगे यहां पर, लेकिन बाबा का इशारा समझ गई थी कि बाबा उधर इशारा कर रहा है। बहुत कम दाम से, अच्छे दाम से वो जमीन मिल गई, ले लिया। फिर दादी ने कहा आप कैसे यहां बनाएंगे इतना जंगल में, इतना पैसा तो यज्ञ में है ही नहीं, और वहां न रोड जाने की न नक्शा पास हो सके, ऐसी जमीन थी चारा वाली, चराव जमीन बोलते ना किसानों की, तो उसको हम ट्रांसफर आबादी में नहीं कर सकते, ये नहीं कर, बहुत सारे विघन और रोड है ही नहीं, जाएंगे कैसे। लेकिन ड्रामा बड़ा कल्याणकारी था, वो गवर्नर जी आए, उनको उस समय सीट मिली, कुछ कारण से गवर्नर रूल हुआ। और गवर्नर रूल होने के बाद उसने सब कागज नीचे से निकलवाए और कायदे से बाबा को जमीन क्लियर हुई। और यहाँ पर सभा में जब फाउंडेशन डालने के लिए खुद आए तो कहते हैं कि गवर्नर हाउस की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ रोड बनेगी। अब गवर्नर हाउस की तरफ से बनेगी रोड, तो यहाँ वालों के पास तो नक्शा ही में रोड ही नहीं थी, पगडंडी थी वहां। अब वो गवर्नर हाउस की तरफ से रोड बनेगी, सरकार की तरफ से रोड बनेगी, तो आखिर वो नक्शा बना, कहाँ से रोड जाएगी, किसे जाएगी। साल गांव के लिए रोड बन गई, तो आज इतना बड़ा ज्ञान स्वरूप बन गया। सबके सहयोग से, तन मन धन से इतना सहयोग दिया लोगों ने, उसकी कहानियां बहुत लंबी हैं, बताऊंगा मैं आपको। ज्ञान सरोवर जो दादी ने खड़े होकर के सब बनवाया, वहां पर बहुत जंगल था, झाड़ियां काटने के लिए सब सेवादारी बुलाए गए सेंटर से, वो सब झाड़ियां कटी। और फिर ऐसा नक्शा बने कि कोई भी बड़े पेड़ न खराब हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। तो आप देखेंगे ना, जितने बड़े पेड़ थे वहां पर अभी तक भी हैं, कोई काटा नहीं। ऐसे डिजाइन किया, ऐसे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स आए, तो उन्होंने ऐसी विधि से बनाया ज्ञान सरोवर को जो कोई भी पेड़ को नुकसान न पहुंचे। इसलिए ट्रेनिंग सेक्शन अलग हो गया, भंडारा दूर चला गया, हाल थोड़ा विधिवत नहीं बन पाया बाबा, इसलिए एक पहली बार जब आए उद्घाटन बाबा ने किया था हाल का, तो बाबा को बाहर निकाल करके ले आए। बाबा ने उद्घाटन किया और बाबा को जब बाहर लेकर के आए तो जितने अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे, बच्चे खड़े हुए थे, क्योंकि बैठने की जगह तो वहां 1500 के अंदर, 2000 के अंदर थे हाल में, और बाबा के बच्चे बहुत आ गए थे। तो जब बाबा बाहर आए तो बाहर देखा इतना सारा झुंड खड़ा है और ये सब बनाया हुआ गोल 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 गोल। बाबा ने कहा ये सब क्या बना दिया, ये तो बहुत वेस्टेज हो गई। बाबा को पसंद नहीं आया नक्शा ना, वो हाल का डिजाइन बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा ने थोड़ा इंजीनियर्स के कान भी खींचे, बोला भी बाबा ने प्यार प्यार से। उस दिन से बाबा को आया कि अभी तो बच्चे बढ़ते रहे हैं तो शांतिवन, फिर बाबा शांतिवन उतरा, नहीं तो शायद समझ रहे थे कि ज्ञान सरोवर में सेट हो जाएंगे सब। अब एकोमोडेशन बहुत छोटा, 400-500-600 लोगों का, और हाल बन गया 1800 लोगों का। तो 600 लोग अगर उस हाल में बैठते हैं तो ऐसे लगता है कोई है ही नहीं, खाली खाली लगता है। लेकिन बाबा का जो एम था कि 5000-6000 का हाल बने और इतनी व्यवस्था हो, तो हो नहीं पाई। तो ड्रामा अनुसार उसमें भी कल्याण था, आबू के अंदर पानी की कमी, आबू के अंदर आने जाने में मेहनत, और यहाँ की सीजन हर एक को सूट नहीं करती, बहुत ज्यादा ठंडी कभी हो जाती तो बीमार पड़ने लगते, बहुत ज्यादा बरसात हो जाती, फाग हो जाती तो ऑक्सीजन कम हो जाती। तो ड्रामा में उसमें भी कुछ भलाई थी, इसलिए वो ज्ञान सरोवर की जमीन जिस भावना से बाबा ने ली थी वो इतना सक्सेस नहीं हुई। लेकिन उसमें एकेडमी बन गई फिर, और विदेशियों को ज्ञान सरोवर बहुत पसंद आता है, वहां आते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो अपनी हर प्रकार की मीटिंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग चलती है। तो ज्ञान सरोवर विदेशियों के लिए बहुत अच्छा, उनके तपस्या का, उनकी स्टडी का बड़ा अच्छा स्थान बन गया। और फिर सारे विंग्स के प्रोग्राम, इतने सारे विंग्स बने हैं, तो उनके लिए भी वो ज्ञान सरोवर काम में आया, सेवा में। और वहां जब निर्माण हुआ तो एक ही दादी ने एक ही नियम बनाया कि हर एक ब्राह्मण 1 रुपया रोज निकाले। 1 रुपया क्या बड़ी बात है, कोई पूछता था इतना बड़ा ज्ञान सरोवर कैसे बनेगा, दादी कहती 1 रुपये से बनेगा। तो इतने 3 लाख 4 लाख, उस समय 3-3.5 लाख का परिवार था, दादी का डायरेक्शन गया तो सब जगह से 1-1 रुपये के हिसाब से भंडारी आने लगी। अब एक बहुत ऐसी माता थी, बहुत गरीब, उसकी कहानी सुनाता हूं मैं। वो सफाई का काम करती थी, और सफाई का काम करके अपना नहा धो करके कपड़े बदल करके फिर मुरली सुनती थी बाबा के, एक सेंटर महाराष्ट्र में। तो वो माता को पता चला कि सब लोग एक एक रुपया वहां भेजते हैं, तो बेचारी ने वो अपनी कमाई से एक एक रुपया बचाती गई और उसी पैसे से उसने एक छोटी अंगूठी बनाई सोने की और अपने टीचर को दी कि दीदी आप जा रहे हैं माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी भी एक ईंट लगा देना। और बड़ी प्यार से वो टीचर ने जब दादी को सुनाया कि दादी ऐसी ऐसी बहुत गरीब माता है और उसने बहुत मेहनत से सफाई करके कमा करके एक एक रुपया निकाल करके अंगूठी भेजी, तो दादी फिर इतना खुश उस अंगूठी को क्लास में ले आई मुरली के बाद में और सबको दिखाई, ऐसे पहले देखो किसने भेजी है, फिर हाथ में पहनी दादी ने और पहन के खूब डांस किया, कहा ज्ञान सरोवर कैसे बना है, ये साहूकारों से नहीं बना है, ये मेरी गरीब भीलनी बच्चियां जो है ना बाबा की गुप्त बच्चियों के सहयोग से बन रहा है। ऐसे गुप्त बच्चे जिनका कोई नाम मान नहीं, जिनका कोई और आस नहीं, लेकिन मेरी एक ईंट लग जाए, तो ऐसे बहुत से बाबा के गुप्त बच्चों के सहयोग से ज्ञान सरोवर बहुत जल्दी बन गया और वहां पर बेहद सेवाएं शुरू हुई। लेकिन बाबा का जो था कि इतने बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे, अब क्या होगा, तो एक बार बाबा ने ऐसे ही वो जमीन जितनी नीचे थी शांतिवन में, तो कहा बाबा टेंट में आएगा, तो वहां पर टेंट लगाए गए 94 में। और जब टेंट लगाए गए तो 10,000 लोगों को बुलाया गया, बहुत बच्चे बढ़ गए थे बाबा से मिलने के लिए, एक ग्रुप बुलाया गया और पूरा ही टेंट में प्रोग्राम था, कोई घर नहीं था, केवल एक कमरा मकान था और दादी क्वार्टर्स का एक गेस्ट हाउस था और कुछ नहीं था वहां बिल्डिंग, तो पूरी टेंट की व्यवस्था की गई और कुछ टेम्परेरी लेटरिन बाथरूम बनाए गए, 10,000 लोगों की प्रबंध के हिसाब से नलके लगाए गए, पानी की व्यवस्था की गई, मना एक दो मास कंस्ट्रक्शन चला, मेला बनाया गया, पहला मेला हुआ। और बाबा को कुछ लीला रचनी थी, हम प्रभु लीला कह रहे हैं क्या होती है, जो उसमें बाबा जब आए टेंट में, बाबा तो आ गए, बच्चों से प्यार से मिल लिए और दूसरे दिन जोर से आंधी आई और इतनी जोर से आंधी आई जो एक भी टेंट जो थे बचे नहीं, सब गिर गए। और दो ढाई बजे रात को जब सब बिस्तरों में सोए हुए हैं और दादी की वहां नींद फिट गई कि अरे ये क्या हो गया, और फिर इतनी जोर से बरसात पड़ी जो सब के सब 10,000 लोग भीग गए, सब कहां जाएं, कुछ तो स्थान था ही नहीं, सब टेंट में ही था। फिर बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा स्थान यहां बनना चाहिए, मैंने युक्ति, एक स्टेज बनाओ, एक छोटा सा ऐसा हाल बनाओ, वो बहुत युक्ति से डायमंड हाउस डायमंड हाल बना। और डायमंड हाल में बाबा ने पहले ये छुट्टी नहीं दी थी कि इतना बड़ा हाल बना के कोई ढकना है, नहीं बच्चे दीवार बना लो ऊपर, स्टेज छत ढक लेना, बाकी ऐसे भले खुला रखना, ऐसी बिल्डिंग्स बना लो 100-150 लोग सो जाएंगे, बाबा के डायरेक्शन से शांतिवन बना। और बहुत जल्दी जल्दी बनता गया, फटाफट बच्चों ने सहयोग भेजने शुरू किया, अभी देखो क्या बन रहा है, मनमोहिनी वन कैसा बना, और अभी सब कमरे अभी जो हाल बनाए थे वो सब छोटे छोटे हाल कमरे बन रहे हैं। तो बाबा बड़ा गुप्त रीति से यज्ञ की वृद्धि करा रहा, और जितनी वृद्धि होती है जितना बड़ा बन जाता है उतना ही छोटा हो जाता है, 20,000 हाल छोटा पड़ गया। कहां तक बाबा को पहुंचना है कोई कुछ उसकी था नहीं है, क्या बाबा कहता ना मैं तीन पैर में सारी वर्ल्ड को विश्व को नाप लेता हूं, तीनों लोगों को नाप लेता है। तो बाबा तो बड़ा गुप्त है और गुप्त बच्चे हैं उसके, जिस प्रकार से जो सहयोगी बन सकता है बाबा उसका संगम पर तन मन धन सब सफल करा रहा है। बच्चे बाबा का एक स्लोगन याद होगा, हमेशा कहता है किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी जलाएगी आग, किस सफल किसकी होगी, जो खर्चे नाम धनी के, जो शिव बाबा के नाम से अपना सफल कर लेगा उसका सफल हो जाएगा। तो बाबा बहुत गुप्त रीति से अपने बच्चों का सब कुछ सफल करा रहा, किस लिए करा रहा है, कई बार मुरली में कहता है मैं जिसको चाहूं साहूकार बना दूं, जिसको चाहूं गरीब बना दूं, बनाता नहीं है लेकिन बन जाते हैं। अगर वो गुप्त रीति से कोई सफल करे तो उनको तो बाबा रिटर्न देने के लिए बन जाएगा ना, वो तो साहूकार बन ही जाएगा। भगवान के कार्य में अगर कोई ने थोड़ा सा भी कर लिया, सफल हो गया उसका, तो उसका तो भाग्य बना हुआ है। और जिसने कंजूसी की, जिसने सोचा इतने सब करने वाले मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, बहुत लोग कर रहे हैं, कई ऐसे होते हैं, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। बाबा तब पूछ रहा तो पूछ लग गई, इसका खत्म हो गया सब कुछ। इसलिए ध्यान रखना, किसी से पूछना नहीं तुमने कितना किया, जिसको जो करना है करो ना, बाबा का बेहद घर है, बाबा का यज्ञ है, जितना जिसको सफल करना कर लो, जिसका भाग्य जिस, बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की कलम देता हूं, मैं हूं भाग्य विधाता, लेकिन कलम बच्चों को देता हूं, तुम जितनी लंबी चाहे अपने हाथ से खींचो, 21 जन्म की खींचनी तो 21 जन्म के खींचो, अगर 84 जन्म की खींचनी तो 84 जन्म की खींच लो, आपके हाथ में है। और कलम है केवल श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जो करने के बाद कर्तापन का अभिमान ना आए, किया स्वाहा, समर्पित, कभी भी वर्णन और चिंतन किया तो उसका खत्म हो जाएगा। एक बार बाबा ने एक मुरली चलाई कि मम्मा ने धन लाई नहीं, समर्पित हुई, कुछ भी घर से लेके नहीं आई, और वो धन लक्ष्मी बन गई, और जो धन लेकर के आए वो समर्पित हुए, उनको धन लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिला। मम्मा का टाइटल क्या है, सरस्वती, वही लक्ष्मी बनती श्री लक्ष्मी। तो श्री लक्ष्मी पद मम्मा ने और इतने थोड़े समय में प्राप्त कर लिया, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, 65 बाबा के 4 साल पहले ही चली गई, और श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लिया। क्या किया बाबा मम्मा ने जो इतनी जल्दी इतना पद मिला, क्या किया, धन सफल कराया, डोनेशन लिया, कमीशन मिला नहीं, कमीशन तो मम्मा को मिली, लेकिन मम्मा की एक बाबा ने बहुत गहरी विशेषता सुनाई है। मम्मा ने जो कुछ किया कभी भी ये नहीं कहा मैंने किया, वो गंभीरता की देवी थी, और गंभीरता के कारण उसका जो जमा था ना वो बढ़ता गया, कभी भी वर्णन नहीं किया किसी के आगे। अगर कोई कहता भी था मम्मा आपने इतना किया, यज्ञ में इतना बढ़वाया, इतना करवाया, मम्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया, बाबा करा दे, बाबा कराता, बाबा कराता। मम्मा के जो मुख पर एक बाबा शब्द था ना, उसने उनका पद बना दिया। कभी भी मम्मा के मुख से ये नहीं निकला कि मैंने वाणी चलाई, मैंने कोर्स कराया, मैंने इसको सरेंडर कराया, मैंने इसको समर्पित कराया, मम्मा ने मैंपन को समाप्त किया हुआ था, और बहुत गंभीर थी, कभी भी किसी के आगे वर्णन नहीं किया, और कभी बाबा के आगे कोई हंसी में कह देता था बाबा इन मम्मा को नशा है। एक बार दादी जानकी सुना रही थी कि एक बार हम सखियों ने थोड़ा सा मम्मा से ऐसे ही थोड़ा प्यार में कहा कि मम्मा आपको तो नशा है ना, मैं इनकी नारायण की लक्ष्मी बनने वाली हूं, तो मम्मा ने बहुत जोर से आंख दिखाई, कहती क्या बोलती हो तुम, मेरा बाप है, भविष्य की बात अभी क्यों कर रही हो, भविष्य में जो बनेंगे बनेंगे, लेकिन ये तो मेरा बाप है ना, अलौकिक बाप है। तो मम्मा की जो प्यार की दृष्टि थी, बाबा के प्रति जो एक भावना थी, बाबा ने कहा मम्मा ने उसको कभी भी ये नहीं क्वेश्चन किया, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, कभी भी संकल्प मात्र नहीं। ऐसी कहानियां मम्मा की हम लोग सुनते आ रहे हैं दादियों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, कि मम्मा सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा कोई देखती थी। अब मैं आपको यज्ञ स्नेही और सहयोगी तो आप सब हो, लेकिन यज्ञ रक्षक बनने की जरूरत है, इस समय की जो आवश्यकता है वो यज्ञ रक्षक बन करके रहने की। स्नेह सहयोग तो सब कर रहे हैं, सबका सफल हो रहा है बाबा के यज्ञ में, लेकिन यज्ञ में जो विघ्न आ रहे हैं वो भी बच्चों के कारण ही आते हैं। अगर कोई बच्चे जरा भी श्रीमत में मनमत मिक्स करते, आज्ञा की जरा भी अवज्ञाएं करते हैं, तो वही सबसे बड़ा यज्ञ में विघ्न है। हम सब बाबा के बच्चे, जो भी स्नेही सहयोगी हैं, ये पाठ पक्का करें कि हम यज्ञ रक्षक हैं। और यज्ञ रक्षक माना यज्ञ में कुछ भी हो रहा हो, मैं इसके प्रति कभी भी अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन न करूं। मेरा दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव, बहुत शुभ चिंतन, ये हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कोई कुछ भी सुनाए, यज्ञ बाबा का है, यज्ञ रक्षक स्वयं भगवान इसका बैठा हुआ है, अगर कोई नीचे ऊपर करेगा अपने आप किनारे लग जाएगा, मुझे उसके पीछे नहीं जाना उन बातों में, मुझे इस यज्ञ की रक्षक बन करके, ईंट बन करके, किले में अगर ईंट एक भी खिसक जाए, बीच से अगर कोई ईंट खसड़ जाए तो पूरा किला कमजोर पड़ जाता है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को समझना है कि मैं इस यज्ञ के किले की ईंट हूं और मुझे इस यज्ञ को मजबूत रखने के लिए चार बातों का बहुत ध्यान देना है। एक पहली बात है, जितना हो सके एक बाबा दूसरा ना, एक का नाम ही, एक नाम ही, पहला मंत्र है एक नाम ही। और जो एक के नाम को, केवल एक के नाम को याद रखता, किसी देहधारी के ऊपर प्रभावित नहीं है, किसी की तरफ झुकाव लगाव नहीं है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक नाम ही, उसके अच्छे वाइब्रेशन इस यज्ञ की रक्षा करते हैं। अगर किसी भी आत्मा के तरफ किसी का झुकाव प्रभाव हो गया, लगाव हो गया, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ में विघ्न है। इसलिए बाबा हम सबको पहला कहता है एक नामी, और दूसरा जितना हो सके अपने बोल की, संकल्प की, अपनी संपत्ति की, जो कुछ बाबा ने दिया है वो बाबा का है, एका नामी। कोई भी फजूल व्यर्थ खर्च मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने इतना कमाया है तो ये मेरा है। हम सब ने कहा है बाबा को, क्या कहा है, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, और जब उसको मैंने दे दिया, बुद्धि से समर्पित कर दिया, किया है सभी ने कि नहीं किया है, अपना अपना बना के रखा है, सोचना, विचार करना, अगर मैंने बाबा को सब कुछ समर्पित किया और बाबा ने कहा बच्चे मैं लेके क्या करूंगा, तुम संभालो, लेकिन ट्रस्टी बन के इस अमानत को अमानत के रूप में यूज करना, इसमें ख्यानत नहीं होने देना। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, अगर मेरे पास धन है तो मैं इस धन को कहीं पर भी व्यर्थ नहीं गंवा सकता। कईयों की एक बहुत भावना होती है, रहम दिली होती है, कहीं जाएंगे, इस गुरु के पास गए, इस मंदिर में गए, ये भिखारी के पास गए, यहां दान करके आए, यहां दान करके आए, यहां दे करके आए, बाबा कहता संस्कार बड़ा अच्छा है, रॉयल है, लेकिन ये दातापन का संस्कार आज कई जगह पर पाप कर्म करा रहा है। किसको हम दान कर रहे हैं, दान भी बाबा कहता पात्र को करना चाहिए। अगर आपका पैसा कोई लेकर के और कुछ कुकर्म कर रहा है, विकर्म कर रहा है, कोई गलत उसकी नेचर है और आपके पैसे का सही प्रयोग नहीं हो रहा है, तो देने वाले पर भी उसका हिसाब बनता है। इसलिए ऐसे नहीं जहां ये वहां हम दे के आ गए, जिधर आए उधर डाल के आ गए, उन्हें शराब पिया या सिगरेट पिया या जुआ खेला या कुछ भी किया गंदा काम, अगर उसमें मेरे पैसे का उसको सहयोग मिल गया तो उसका हिस्सा भी मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना, ये प्रभु की अमानत है, मैंने भगवान को दे दी है, इसको बहुत विधि पूर्वक यथार्थ स्थान पर ही सफल करना, कहीं भी ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाबा हमको कहता है इकोनॉमी। और तीसरा कहता है एक मत। जहां संगठन में एकता है वहां बहुत बड़ा बल है। अगर ग्रुप में कोई भी दो पार्टी हो जाती है कहीं पर भी, वहां टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं और अनेक नए नए विघ्न खड़े होते हैं। इसलिए जैसे हमारा बाबा एक है, हमारी पढ़ाई एक है, हमारी ड्रेस एक है, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारी मान्यताएं एक जैसी हैं, ऐसे हमारी विचारधाराएं भी एक जैसी होनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ अपने आप को सहन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, कुछ मरना पड़ता है। विचारों को मिलाना, संस्कारों को मिलाना, बाबा कहता भिन्नताएं हैं लेकिन भिन्नता में एकता दिखाई दे, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब यज्ञ की रक्षा होगी। हमने अपनी दीदी दादी को बहुत समीप से देखा, दो दादियां, दोनों ने यज्ञ को कैसे बढ़ाया। विचार संस्कार दोनों को बहुत अलग थे, बहुत भिन्न थे, लेकिन भिन्नताएं होते हुए भी ऐसे मिला के चले दोनों, तो कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट, मान लो दीदी ने मेरे के लिए कुछ कह दिया, कोई डायरेक्शन मेरे को मिल गया और मैं दादी से उस डायरेक्शन को चेंज कराना चाहूं, कभी नहीं करेगी। दीदी ने कहा है ना, तुम मेरे पास क्यों आए हो? दीदी दादी दो नहीं है, एक है। इतना एक होकर के यज्ञ को चलाया, इसलिए कभी भी कोई गलती नहीं हुई। हमारा ये परिवार है, हम सब एक मत के सूत्र में बंध करके रहे। कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई संस्कार है, बाबा कहता किसमें नहीं है, लेकिन तुम किसी की विशेषताओं को देखो, उसकी कमी कमजोरियों को मत देखो, तब एकता का संगठन मजबूत होगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और इस यज्ञ में कोई भी विघ्न आएगा, हम सब एक होकर के उसको सामना कर सकेंगे और इसकी रक्षा कर सकेंगे। और चौथी बात है, जितना हो सकता है मन और बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता से एक बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट होता है। मन जितना एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वातावरण बनेगा, और वातावरण भी इस यज्ञ का रक्षा कवच है। जो हमारी वृत्तियों से वायुमंडल अच्छा बन रहा है, शुद्ध पॉजिटिव संकल्प, एकाग्र संकल्प इस यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो यज्ञ रक्षक आत्माएं से स्नेही हो, सहयोगी हो, रक्षक बनना है। एकनामी, एकानामी, एकाग्रता और एक मत का संगठन, ऐसी अगर चारों धारणाओं को अपना के चलेंगे तो यज्ञ रक्षक बन जाएंगे, और यज्ञ रक्षक बाबा के राइट हैंड सेवादारी कहलाएंगे। ठीक है, बाकी एक दो प्रश्न थे, 10 बजने वाला है। मैं आपको, भाइयों ने मेरे से चलते फिरते पूछे थे मुरली के बारे में, मैंने कहा था टीचर बहन को देना, दिया है किसी ने? नहीं दिया होगा। कोई पूछ रहा था ये मुरली कैसे बनाते हो, क्या करते हो, कहां से आती है? तो बाबा की साकार मुरलियां जो है, मैं शॉर्ट में सुनाता हूं 5 मिनट के अंदर। बाबा ने मुरलियां तो बहुत चलाई, जब से आया तब से मुरली चलाना शुरू किया, लेकिन 50 तक की जो भी मुरलियां चली वो प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि संगठन एक था, परिवार था, और सभी ने अपनी अपनी डायरियों में नोट्स लिए। उन मुरलियों की कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं थी, और जब वहां से आने लगे तो सरकार ने सब सामान ले जाने की छुट्टी दे दी, तुम सब ले जा सकते हो यहां से, तुम लोग अल्लाह लोग हो, तुमको जो चाहिए यहां से ले जाओ, कुछ भी छोड़ के क्यों जाओगे। तो बाबा ने देखा स्टीमर से बहुत ज्यादा सामान है, किस सामान को छोड़ा जाए। सबसे अधिक वजन था डायरियों का, तो बाबा ने बड़ी युक्ति रची, कैसे ये डायरियां छोड़ेंगे, इनका दिल में मोह हो गया है। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुरली चलाई, बच्चे द्वापर में जो शास्त्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, भूकंप आएगा और जो तुम्हारा जमीन में गड़ा हुआ होगा वो बाहर आएगा, उससे शास्त्र बनेंगे। इसलिए जितनी कापियां हैं लाओ, सब इकट्ठा करो, और एक टैंक के अंदर लोहे का एक बहुत बड़ा टैंक लेकर के जमीन में गाड़ दिया सर, कोई भी डायरी लाए नहीं वहां से। इसलिए 50 तक की कोई मुरलियों का रिकॉर्ड नहीं बना, वो सब वहीं छोड़ के आ गए। फिर धीरे धीरे ज्ञान रिफाइन हुआ, पहले 50 मुरली छपी, फिर 100 छपी, हम जब आए तो 200 छपती थी, और आज कितनी हजारों में छप रही हैं और सभी भाषाओं में छप रही हैं। लेकिन ज्ञान जो रिफाइन हुआ 62-63 में हुआ, वो धीरे धीरे, पहले अंगुष्ठाकार था, ज्योतिर्लिंगम था, फिर धीरे धीरे बिंदु रूप तक आया, आत्मा भ्रकुटी में है, बहुत छोटी बिंदु है, बाबा का रूप भी ऐसा ही है, ज्योतिर्बिंदु है, ये सारी बातें 62-63 में रिफाइन हुई। और जब रिफाइन हुई तब बाबा की मुरली चली, कि पुराना ज्ञान तो बाबा ने ABCD का पढ़ाया, छोटे बच्चों का था, अब उसको तुम सब जला दो, बेचना भी नहीं और रखना भी नहीं। बड़ी युक्ति से बाबा ने वो मुरलियां जलवा दी। फिर 63 के बाद सबने अपने पास संभाल के रखा, और बाबा जब अव्यक्त हुए 68-69 में, तो केवल 5 साल का फुल स्टॉक हम सबके पास था। इसलिए जब रिवाइज कोर्स की बात आई, बाबा ने कहा जब लास्ट पेपर होता है, पेपर का समय होता है, तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। इसलिए बाबा की जो मूल्यां चलेंगी वो तो चलेंगी अव्यक्त रूप में, लेकिन ये 5 साल का जो कोर्स है इसको रिवाइज को। तो अभी नए बच्चों के लिए अथवा पुराने बच्चों के लिए 5 साल का वो रिवाइज कोर्स है हमारे पास, और बीच बीच में अव्यक्त बाबा की मूल्यां चलती हैं। 44-45 साल की अव्यक्त मूल्यां हैं और 5 साल 6 साल की साकार मूल्यां हैं जिनको हम रिवाइज कर रहे हैं। समय देखते हैं, मंथ वही होता है लगभग, लेकिन डेट चेंज हो जाती है, सन चेंज हो जाता है। मंथ उस लिए होता है, मान लो आज होली है, मार्च में होली होती है, शिवरात्रि फरवरी में होती है। अगर मैं ये मूल्यां नवंबर दिसंबर में रिवाइज करूंगा तो उस समय दिवाली हो रही होगी, और बाबा कहेगा आज होली है, तो लोग कहेंगे इनको क्या हो गया। इसलिए मास को मैं बदलता नहीं हूं, मास वही रहता लगभग, लेकिन डेट और टाइम देख करके, गुरुवार का दिन आता है तो गुरुवार की मूल्य चलनी चाहिए, राखी का दिन आता तो राखी की चलनी चाहिए। ये बाबा ने मुझे ड्यूटी दादियों ने दी, उसी अनुसार से त्योहार पर त्योहार की मूल्यां आती हैं, गुरुवार पर गुरुवार की मूल्यां आती हैं, वो मैं सेटिंग करते समय ध्यान रखता हूँ। और अभी तो बाबा ने वर्ल्ड वाइड एक ही पढ़ाई, एक जैसी सब जगह चले, इसलिए हमें 2-3 महीना पहले से मूल्य तैयार करनी पड़ती है। तैयार करके इंटरनेट के द्वारा सबको पहले भेज देता हूँ, सब जगह ट्रांसलेशन होती है, पहले लंदन जाती है, वहाँ इंग्लिश में होती है, फिर इंग्लिश से कई भाषाओं में होती है, और भारत के अंदर भी 7-8 भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। इसलिए 3-2 महीने पहले ही हम सबको हिंदी मूल्य तैयार करनी पड़ती है, उसमें वरदान, स्लोगन, क्वेश्चन आंसर, सार, धारणा का सार, ये सब एडिशन मैं करता हूँ दादी की प्रेरणा से। बाकी मुरली केवल ओम शांति से नमस्ते तक की है, ठीक है। मुरली के विषय में प्रश्न था ना, किसका था, दो भाइयों ने मेरे से पूछा था, पीछे बैठे हैं, समझ गए, तो वही मुरलियां अभी रिवाइज हो रही है। ओम शांति।